समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास, जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल के मैदान की गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं लवली निगम और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट अनुजा। अनुजा, आज ही के दिन 1564 में एक ऐसे लेखक ने दुनिया को अलविदा कहा था जिनकी कृतियों का सम्मान जो है बहुत किया गया और बहुत सारी भाषाओं में उनका अनुवाद भी हुआ। ये लेखक थे विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने 35 नाटक और 200 से अधिक कविताएं लिखी। उन्हीं के सम्मान में 1995 में यूनेस्को ने और 2001 में भारत सरकार ने विश्व पुस्तक दिवस मनाने की घोषणा की थी और आज हम इस पर आगे भी बात करेंगे।
जी हाँ, नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल लवली। Yes, we will talk about it later in our program, but we are also commemorating the birth of Lord Hanuman today, the revered god known for his strength, devotion and also unwavering loyalty to Lord Ram. We are celebrating Hanuman Jayanti, the timeless wisdom and devotion of Hanuman. Let's remember the lessons of humility, strength and selfless service that Hanumanji embodies. Well, to begin with this episode of Parikrama, as always, first the headlines at this hour. Campaigning for second phase of Lok Sabha polls peaks as leaders of various political parties leave no stone unturned to woo the voters.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च शिक्षा पर QS विश्व रैंकिंग में भारत के प्रदर्शन को उत्साहजनक बताया।
DGCA asks airlines to ensure children up to 12 years of age allocated seats with parents travelling on same PNR.
यूरोपीय संघ ने वीजा को लेकर नियम जारी किए, इससे भारतीय लंबी अवधि वाले बहुप्रवेश शेंगेन वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
एंड इन IPL क्रिकेट, चेन्नई सुपर किंग्स टू टेक ऑन लखनऊ सुपर जायंट्स एट चेन्नई दिस इवनिंग। And Lavline, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And of course, in the beginning of the program, you just started with the thing that today is World Book and Copyright Day. Lavline, the habit of reading is one of the best qualities that a person can possess. Books are known to be our best friend for a reason. So it is very important to develop a good reading habit. Reading has numerous benefits. It improves concentration, literacy and much more. Kids should be introduced to age-friendly books that will encourage them to read. Reading helps a person to develop a positive approach towards life. It is a habit that can improve our lifespan by reducing our stress, enhancing our mental health, developing new neural pathways, helping us learn empathy, improving our ability to communicate, and of course, it creates a healthy entertainment for all of us. And studies have shown that reading has benefits for both our physical and mental health. Just like doing yoga, reading can reduce stress and has been shown to reduce a person's blood pressure and heart rate too. So celebrated every year on 23rd of April, World Book and Copyright Day, or it is also called World Book Day, it is an occasion to promote the joy of books and the art of reading, where the date was selected by UNESCO to pay homage to the renowned literary figures including William Shakespeare, the Spanish writer Miguel Cervantes, and also Inca Garcilaso. And of course, copyright is the exclusive right that the owner of an intellectual property has to that property. It protects a creator's work from unauthorized duplication, a form of protection granted by law for original works of authorship.
जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पुस्तक हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है, लेकिन अब बदलते समय के साथ कंप्यूटर और इंटरनेट ने पुस्तकों की जगह ले ली है, ये भी सच है, जिस वजह से लोग अब पढ़ने के लिए किताबों का इस्तेमाल कम ही करते हैं, तो लोगों को किताबों का महत्व बताने के मकसद से यूनेस्को ने 23 अप्रैल के दिन को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। पढ़ना किसे नहीं अच्छा लगता अनुजा, बचपन में जो स्कूल से आरंभ होती है वो हमारी पढ़ाई वो जीवन के अंत तक जाती है, और कहते हैं ना ज्ञान और पुस्तक से पढ़ा हुआ जो ज्ञान है वो हमेशा हमारे साथ रहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश आजकल पढ़ने की प्रवृत्ति लोगों में कम होती जा रही है, पुस्तकों से लोग दूर भाग रहे हैं। आज सब लोग सभी कुछ क्योंकि नेट पर खंगालते हैं उन्हें मिल जाता है। शोध बताते हैं कि इसके चलते लोगों की जो जिज्ञासु प्रवृत्ति और याद करने की क्षमता है वो भी कम होती जा रही है। बच्चों के लिए यह खास समस्या है। पुस्तकें बच्चों में अध्ययन की प्रवृत्ति, जिज्ञासु प्रवृत्ति, सहज कर रखने की प्रवृत्ति और संस्कार रोपित करती हैं। पुस्तकें हमें न सिर्फ ज्ञान देती हैं बल्कि कला, संस्कृति, लोक जीवन, सभ्यता के बारे में भी बताती हैं। नेट पर लगातार बैठने से आंखों और मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है, ऐसे में पुस्तकों के प्रति लोगों में आकर्षण पैदा करना जरूरी हो गया है। इसके अलावा बच्चे गरीबी के चलते भी पुस्तकें नहीं पढ़ पाते, इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। सभी के लिए शिक्षा कानून को इसी दिशा में देखा जा रहा है।
राइट, एंड वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज टू रेज अवेयरनेस about the importance of protecting copyrights and promoting the rights of authors and publishers. Copyright is a legal framework that grants authors and creators exclusive rights to their original works, such as books, music, art, and other forms of creative expression. It enables authors to control and profit from their creations, encouraging creativity and innovation while protecting their financial and moral rights. So, World Book and Copyright Day serves as a platform to highlight the challenges and issues faced by the publishing industry and also the importance of preserving cultural heritage and promoting diverse voices in literature. So this date was a natural choice for UNESCO's General Conference held in Paris in 1995 to pay a worldwide tribute to books and authors on this date, encouraging everyone to access books. Celebrations take place all over the world to recognize the scope of books, a link between the past and the future, a bridge between generations and across cultures. Of course, reading can give us the unique ability to both entertain and teach.
जी, और अगर इस विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के महत्व के बारे में हम बात करें तो विश्व पुस्तक दिवस पर लोगों को पुस्तकों और लेखों का सम्मान करना सिखाता है। ये दिन उन लोगों के लिए तो बहुत ही विशेष हो जाता है जिन्हें पढ़ने का शौक होता है। विश्व पुस्तक दिवस दुनिया भर के लोगों, खासतौर से मीडिया, लेखकों और शिक्षाविदों जैसे पुस्तक उद्योग को बढ़ावा देने में योगदान वालों को भी सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस ये सुनिश्चित करता है कि साक्षरता को सभी रूपों में बढ़ावा दिया जाना चाहिए और लोगों तक शैक्षिक संसाधनों की हर तरह से पहुंच होनी चाहिए।
राइट, सो आई मीन वी कैन ऑलवेज टॉक टू आवर लिसनर्स अबाउट सम ऑफ द एक्टिविटीज विच आर यूजुअली टेकन अप बाय पीपल ऑन वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, लाइक बुक एक्सचेंज इवेंट। Consider organizing a book exchange event where people can bring books they have already read and exchange them for new ones. And this event can be hosted at a local library, bookstore, or even online through social media platforms. It is a great way to promote reading and foster a sense of community among book lovers. Lovely.
और प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किए जा सकते हैं अनुजा। किसी स्थानीय लेखक को आमंत्रित किया जा सकता है या प्रश्नोत्तर सत्र के लिए किसी प्रसिद्ध लेखक के साथ एक आभासी सत्र भी आयोजित किया जा सकता है। ये इंटरैक्टिव सत्र प्रतिभागियों को लेखक के कार्यों, उसकी लेखन प्रक्रिया, प्रेरणाओं और उनके रचनात्मक प्रयासों की सुरक्षा में कॉपीराइट के महत्व के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता है। नवोदित लेखकों की बात करें तो उनके लिए प्रेरणादायक और आकर्षक गतिविधि हो सकती है और साहित्य के प्रति उनके सराहना को और गहरा कर सकती है। ये गतिविधि रचनात्मकता को बढ़ावा देने के साथ साथ कॉपीराइट का सम्मान करने के महत्व के बारे में जागरूकता भी बढ़ा सकती है।
Right, and also literary quizzes can be arranged on these days so that it will of course give a little more interest in the books to the younger generation. So rightly said by Charles William Eliot, books are the quietest and the most constant of friends. They are the most accessible and wisest of counselors and of course the most patient of teachers.
और इसके अलावा कहानी सुनाने का सत्र भी बच्चों के लिए आयोजित किया जा सकता है अनुजा। आपको याद होगा जब हम छोटे होते थे तो अक्सर हम कहानी जोर जोर से पढ़ा करते थे और वो आपके दिमाग में भी बस जाती थी।
एब्सोल्युटली।
Oh. और समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का क्या कुछ खास है उनके पास। आज कहां से शुरुआत करें अनुजा?
लेट मी सी, इन फैक्ट वी आर गोइंग थ्रू द समर सीजन, इट हैज जस्ट स्टार्टेड लवलीन एंड इट्स गोइंग टू बी हॉटर डे बाय डे एंड ऑफकोर्स द समर सीजन इन इंडिया ब्रिंग्स विद इट द एक्साइटमेंट ऑफ हॉलीडेज एंड विजिट्स टू आवर नेटिव प्लेसेस। आपको भी याद होगा आप नानी दादी के यहां जाएंगे,
समर वेकेशन का हम इंतजार किया करते हैं।
सो इंडियन रेलवेज हैज बीन अ कॉन्स्टेंट कंपेनियन इन दीज जर्नीज फॉर मेनी मेनी ईयर्स नाउ। दिस ईयर टू सेंट्रल रेलवेज हैज अनाउंस हंड्रेड्स ऑफ समर स्पेशल ट्रेन्स टू मीट द डिमांड ऑफ पैसेंजर and is making all-round efforts to make these journeys comfortable and memorable. We have more on this from our Mumbai correspondent.
In order to clear the extra rush of passengers during the summer season, Central Railways has announced more than 400 special trains from various locations like Mumbai, Pune, Nagpur and Kolhapur towards Bihar, Uttar Pradesh, Delhi and northeastern states among others. Speaking to Akashvani, Chief Public Relations Officer of Central Railway, Dr. Swapnil Dhanraj Neela informed about the special services planned for the season.
Central Railway has planned for Uttar Pradesh 116 trains up to end of June. Again for West Bengal, we have planned special 7 trains. Tripura, we have planned 11 trains. For Bihar bound people, we have planned 94 trains. In total, we will be starting 450 trains. We would like to highlight that number which has been mentioned are in addition to those trains which are already running.
Meanwhile, considering the scorching heat, Central Railways has taken adequate steps to provide potable and cool drinking water to its passengers. A total of 8,093 water taps, 498 water coolers and 149 tube wells have been provided at 434 stations on Central Railway.
Also, we have a group of officers who are monitoring both the crowd and availability of water and other amenities for passengers on a 24/7 basis.
With all these initiatives, Central Railways strives to provide a comfortable and convenient travel experience for all its passengers. With Pratna, this is Nisha Rani for Parikrama from Mumbai.
और अनुजा, अभी थोड़ी देर पहले हम हनुमान जयंती का जिक्र कर रहे थे। हनुमान जयंती चैत्र शुक्ल पूर्णिमा पर मनाई जाती है और इस अवसर पर आज अयोध्या में धार्मिक श्रद्धा और भक्तिभावपूर्ण वातावरण में प्रातःकाल दक्षिण परंपरा पर आधारित काले राम मंदिर में हनुमान जी की जयंती बहुत ही धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। जानकी महल ट्रस्ट सहित अन्य मंदिरों में भी ये जयंती मनाई जा रही है। इसके लिए हनुमान मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। हनुमान जयंती के कारण और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे अयोध्या संवाददाता तन्मय सोनी।
हनुमान जयंती पर आज अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। ब्रह्ममुहूर्त से ही भक्तों ने पावन शैला सरयू में स्नान करके ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी, कनक भवन, नागेश्वर नाथ और श्री राम जन्म भूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। अयोध्या के राजा के रूप में स्थापित हनुमान जी की जयंती पर आज मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विशेष रूप से दक्षिण परम्परा पर आधारित काले राम मंदिर में भगवान हनुमान जी का अभिषेक करके पूजा आरती की गयी और नारदीय संकीर्तन के साथ साथ एक भंडारे का आयोजन किया गया। इस मंदिर में काले कसौटी पर उत्कीर्ण हनुमान जी की प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी है, जो कि भगवती का स्वरूप है, जिनके हाथ में गदा की जगह कटार मौजूद है। उनका यह स्वरूप अहिरावण वध के समय ही प्रत्यक्ष हुआ था। कहते हैं जब अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक ले गया था तो वहां उनकी बलि चढ़ाना चाहता था। ऐसी मंशा के साथ देवी उपासना करके बलि चढ़ाने के पहले भगवान राम से कहा कि हम आपकी बलि चढ़ाना चाहते हैं, आप अपने ईष्ट को याद कर लीजिए। इस पर भगवान राम और लक्ष्मण ने हनुमान जी का स्मरण किया तो हनुमान जी सामने मौजूद देवी जी की प्रतिमा में ही प्रवेश करके प्रकट हो गए और अहिरावण का वध किया। इसीलिए आज के दिन अयोध्या के काले राम मंदिर, जानकी महल ट्रस्ट सहित प्रमुख मंदिरों, वाराणसी के संकट मोचन और राजस्थान के बालासार स्थित मेहंदी बालाजी मंदिर के साथ साथ संपूर्ण दक्षिण भारत के मंदिरों में हनुमान जयंती मनाई जाती है। परिक्रमा के लिए अयोध्या से तन्मय सोनी।
In fact, Laveen, last week we celebrated Ram Navami on the 17th of this month. And in a splendid display of devotion and tradition, Sri Ram Navami Brahma Mahotsavam was celebrated with fervor and grandeur yesterday in the historic town of Vontimitta, Andhra Pradesh. Thousands of devotees flocked to Sri Kodana Ramaswamy Temple to participate in the elaborate festivities honoring Lord Ram and Sita. We have more on this from our correspondent.
Sri Ramanavami Brahmotsavalu are taking place in a grand way in Ontimitta Kodandarama Swami Temple. Being a state-sponsored event, arrangements were made by the Andhra Pradesh government for the Kalyanotsavam of Lord Kodandarama Swami and Goddess Sita. The Kalyana Vedika witnessed a huge number of devotees where the celestial wedding of Sri Sita Rama was held with utmost grandeur. The event began at 6:30 p.m. in the temple and lasted till 8:30 p.m., followed by a series of rituals in the auspicious Lagnam. The much-awaited episode, Mangala Sutra Puja and Mangala Sutra Dharana, were performed with utmost religious fervor amidst chanting of Vedic hymns. The 13 jewels presented to Ontimitta Kodandarama were displayed on the occasion. The traditional Edurukulu ritual with both the bride and bridegroom facing one another on separate tiruchis was performed. Around 1,20,000 laddus were offered as prasadam by the Tirumala Tirupati Devasthanam to the devotees. Andhra Pradesh Special Chief Secretary Karikal Valavan, S.S. Rawat and other government officials were present on the occasion on behalf of the state government. Allu Murali for Parikrama from Vijayawada.
Naveen, election fever is on. In view of the upcoming Lok Sabha election, we present a capsule based on state profile, giving details of the number of phases, date of polling, number of seats and other relevant facts by our correspondents. And in this series, first we are taking our listeners to
Kerala. केरल में हम चलते हैं अट्टिमंगलम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र. केरल के 20 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है ये, जहां राज्य के अन्य सभी निर्वाचन क्षेत्रों के साथ 26 अप्रैल को यानी दूसरे चरण में मतदान होगा. इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है. तीन प्रमुख राजनीतिक दल हैं, भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए, कांग्रेस का नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ और सीपीआईएम के नेतृत्व वाला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ. चुनाव अभियान यहां बहुत जोर शोर से जारी है और जानकारी हमारे सहयोगी से.
केरल में तिरुवनंतपुरम जिले का अट्टिंगल निर्वाचन क्षेत्र राज्य में कड़े मुकाबले वाले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है. लोकसभा सीट के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं. मुख्य मुकाबला एनडीए उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, यूडीएफ उम्मीदवार और वर्तमान सांसद अडूर प्रकाश और वर्कला विधानसभा क्षेत्र से विधायक एलडीएफ के वी जॉय के बीच है. अट्टिंगल में मतदान की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. निर्वाचन क्षेत्र में 1,423 मतदान केंद्र हैं. कुल मतदाताओं की संख्या 13,96,807 है. अट्टिंगल का राजनीतिक इतिहास अप्रत्याशित रहा है. 2019 के आम चुनाव में यूटीएफ के अडूर प्रकाश ने एलडीएफ के ए संपत को पराजित किया था. सीपीआईएम नेता ए संपत ने 2014 और 2009 में इस सीट पर जीत दर्ज की थी, जिससे यूटीएफ दूसरे स्थान पर रही. इस बार तीनों प्रमुख मोर्चों ने राष्ट्र नेताओं और प्रमुख प्रचारकों की लगातार उपस्थिति के साथ अपने अभियान को तेज कर दिया है. जहां यूटीएफ अट्टिंगल में अपनी जीत दोहराने के प्रयास में है, वहीं इस सीट पर दोबारा कब्जा करने के लिए एलडीएफ ने पूरी ताकत झोंक दी है. इस बीच एनडीए उम्मीदवार आशा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की पहल से जीत की संभावना सुनिश्चित होगी, जिससे अट्टिंगल में मुकाबला और कड़ा हो जाएगा. तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह.
And now we bring you a report on Yavatmal Vashim Lok Sabha constituency of Maharashtra. More from our correspondent.
In Maharashtra, the Yavatmal-Vashim constituency in western Vidarbha will see a direct electoral fight between the two factions of Shiv Sena. The sitting MP who represented this constituency for 5 consecutive terms, Bhavna Gavli, who represents the Shiv Sena Shinde faction, is denied the candidature. At the same time, Rajashree Patil, the wife of Hingolit Shiv Sena MP Hemant Patil, is given the candidature, Sanjay Deshmukh. The candidate from Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray faction is contesting for the first time from this constituency. A total of 17 candidates are in the electoral fray. Vanchit Bahujan Aghadi candidate Abhijit Pawar's candidature has been rejected due to errors. Party has announced its support for Samanak Party candidate Anil Rathod. Former MP Aribabu Rathod from Bahujan Samaj Party is also in the fray as a candidate. Campaigning for Yavatmal Vashim Lok Sabha constituency is in the final stage as prominent political leaders like Aditya Thackeray, Rohit Pawar and Uddhav Thackeray held campaign meetings for the Shiv Sena Thackeray faction's candidate Sanjay Deshmukh, while Chief Minister Eknath Shinde and Deputy Chief Minister Mr. Devendra Fadnavis hold rallies for their candidate Rajashree Patil. Dhananjay Vankhede, Akashwani News, Nagpur.
And Lavleen, it's now time to take all of us on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
23rd April is remembered as Kongjom Day in Manipur every year to pay tribute to the war heroes of the Anglo-Manipuri War
1891.
Manipuri people resented British interference in the internal affairs of Manipur. In March 1891, the British army fired the first shot at Kangla with an objective of arresting Yuvaraj Tikendraji. After the whole day's fighting on the 24th of March, the British declared a ceasefire. A meeting was called at Kangla between the representatives of people and the British administration.
For a darbar to be held, 5 British officers were sent. When the talks failed, the Manipuri people attacked the British delegation. Knowing the serious situation of the British in Manipur, 3 powerful regiments of the British army were sent via Silchar, Kohima and Tamo. To resist the advancing British column from Tamo, 700 Manipuris were sent to Thoibal under Wang Kirakpa and Yenkoiba Major.
At this critical time, the Maharaja sent 400 sepoys under the leadership of Pauna Brajbasi and Chongtha Mia Singh to oppose the British forces. But the Manipuri forces were outnumbered and the enemy was superior in arms too. When the war began, powerful British guns had fatal impacts at the fort of Manipur, but the gallant Manipuri warriors fought till their last breath to safeguard the territory and independence of Manipur.
Manipur built 3 defensive places to fight against the invaders. The first one was at Palel, the second at Kakching, and the third was at Kongjom. Many Manipuris, including Pukramba Tanka, Kumbong Subedar, Leizang Jamadar, and Athokpa Diwan, sacrificed their lives. 2 Thangkuls were also among those killed in hand-to-hand fight. On the 27th of April, 1891, the British forces occupied Kangla. The hero of the battle, Major Pauna Brajbashi, is being honoured by the Manipuris as the epitome of patriotism and bravery.
Till his last breath, he refused to surrender and bravely chose death over serving the British. Among others who fought gallantly in the battle were Major Chongtha Mia, Chinglen Sana, Kumbong Major, Loitongba Jamadar, Kaisa Jamadar, Heirang Kongja and many more.
The heroism of the gallant warriors is being passed down through generations in the form of a traditional ballad, Kongjom Parva. Every year, on the 23rd of April, the whole state of Manipur pays homage to those great warriors at the Kongjom War Memorial Complex. The solemn memorial is situated about 35 kilometers south of Imphal in Thoubal district, at the site where the battle was fought between Manipuri and the British. It stands there as a living symbol of the spirit of patriotism and heroism of the Manipuris.
We also pay tribute to Vittalbhai, resident of Surat, Gujarat. He was a school teacher at Bardoli. Vittalbhai took part in the Forest Satyagraha 1930 and was also involved in the Salt Satyagraha April 1930. While participating in the Salt Satyagraha at Navsari, he was fatally injured in a police lathi charge. He was admitted to a hospital at Navsari, where he breathed his last on the 23rd of April, 1930.
We also remember Rao Singh. Rao Singh was a soldier in the Ludhiana Regiment of British Indian Army. He took leading part in 1857 War of Independence against the British rule. He was captured by the British soldiers and charged with mutiny and sedition. Rao Singh was sentenced to death and hanged on the 23rd of April, 1858.
और अब खेल के मैदान की ओर रुख करते हैं अनुजा. आईपीएल क्रिकेट चल ही रहा है. आज चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा लखनऊ सुपर जायंट्स से और यह मैच खेला जाएगा शाम 7:30 बजे. कल राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हराया था 9 विकेट से.
And if you talk about the business news of the day, benchmark indices ended higher for the 3rd straight session with Nifty above 22,350. The BSE Sensex jumped 90 points or 0.12% to settle at 73,738, while the Nifty 50 rose 32 points or 0.14% to close at 22,368. And in intraday trade, Brent crude was trading at $87.04 per barrel.
और अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज है जयंती, पुण्यतिथि या फिर जन्मदिन. शुरुआत करते हैं अनुजा पंडित माधवराव सप्रे जिनका आज पुण्यतिथि है. आज ही के दिन 1926 में उनका निधन हुआ था. राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रखर चिंतक, मनीषी संपादक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सार्वजनिक कार्यों के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की श्रृंखला तैयार करने वाले प्रेरक मार्गदर्शक थे। गुरु कर्मयोगी पंडित माधवराव सप्रे का कृतित्व और अवदान कालजयी है। माधवराव सप्रे जी की कहानी एक टोकरी मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी होने का श्रेय प्राप्त है।
राइट एंड सप्रे टुक पार्ट इन द ट्रांसलेशन ऑफ मराठी राइटिंग्स टू हिंदी। ही स्टार्टेड प्रिंटिंग द मराठी केसरी ऑफ लोकमान्य तिलक एज हिंदी केसरी इन द स्टेट, फोर्जिंग अ कनेक्शन बिटवीन द टू स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। And moving on, today is also the death anniversary of Shamshad Begum, who was both an outstanding singer and a successful famous one. Notable for her distinctive voice and range, she sang over 6,000 songs in Hindustani, Bengali, Marathi, Gujarati, Tamil and Punjabi languages, among which 1,287 were Hindi film songs. She worked with renowned composers of the time such as Naushad Ali and O.P. Nair, for whom she was one of their favorites. Her songs from the 1940s to the early 1970s remained popular and continue to be remixed even today. Begum's talent was first spotted by her principal when she was in primary school in 1924, and her popular breakthrough came when she began singing on All India Radio in Peshawar and Lahore in 1937.
जी, भारतीय सिनेमा में हिंदी फिल्मों की शुरुआती पार्श्व गायिकाओं में से एक थी और उनकी जो खनक थी, आवाज थी, सुरीली आवाज थी, बहुत से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। गीतों की लोकप्रियता ने शमशाद बेगम को प्रसिद्धि की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 2009 में भारत सरकार ने शमशाद बेगम को कला के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। और अगर उनके कुछ गानों की बात करें तो बहुत हैं, कभी आर कभी पार, कजरा मोहब्बत वाला, लेके पहला पहला प्यार, बूझ मेरा क्या नाम रे, बहुत है। तो हम एक गाना सुनते हैं उनके यहाँ से।
कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर, कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर, सैया घायल की अरे तुमने मोरा जिगर, कितना संभाला मेरी तूने नाम खो
अब जिक्र करते हैं धीरेन्द्र वर्मा का। हिंदी और ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। जो कार्य हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, वही कार्य हिंदी शोध के क्षेत्र में डॉ धीरेन्द्र वर्मा ने किया। अगर हम ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
And today is also the death anniversary of Satyajit Ray. There is perhaps no filmmaker who exercised a total control over his work as Satyajit Ray. He was responsible for scripting, casting, directing, scoring, operating the camera, working closely on art direction and editing, even designing his own credit titles and publicity material. So we have chosen a song which was written by him for his movie for which he directed.
आहा की आनंद आकाशे बाताशे, आहा की आनंद आकाशे बाताशे, आहा की आनंद आकाशे बाताशे, शाखे शाखे पाखी डाके कत शोभा चारिपाशे पाखी डाके।
और सत्यजीत रे की बात की जाए तो उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया। इसके अलावा भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। सत्यजीत रे ने विश्व में भारतीय फिल्मों को नई पहचान दिलाने के क्षेत्र में अनुजब बहुत काम किया।
Right, and today is also, we remember Vitthal Ramji Shinde on his birth anniversary. He was a social and religious reformer in Maharashtra. He was prominent among the liberal thinkers and reformists in India prior to its independence. He has been recognized as a social reformer and an activist fighting for greater equality in Indian society. He is particularly noted for opposing the practice of untouchability.
जी, और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि विराम दें हम इस कार्यक्रम को, तो समय आ गया इजाजत लेने का। लवली निगम और अनुजा कुमार की तरफ से नमस्कार।
नमस्कार।